कारण के लक्षण में बताया गया कि यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतः अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम्। माने जो कार्य के पूर्व में होता हो और नियत होता हो और अनन्यथा सिद्ध होता हो वह कारण कहलाता है। तंतु बेमा आदि जो है पट का कारण होता है, क्योंकि पट से पहले तंतु बेमा आदि रहते हैं और वह नियत भी होते हैं। माने ये जब पट उत्पन्न होगा तो ये तंतु बेमा आदि निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा, व्यापक है, अतिशय अनन्यथा सिद्ध भी है, क्योंकि इसके बगैर, इसके बिना पट की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो कार्यात पूर्व भावत्व भी है, नियतत्व भी है और अनन्यथा सिद्धत्व भी है, इसलिए तंतु बेमा आदि जो है वह पट का कारण है। ये बात पूर्व पाठ में आई थी। अब यहाँ पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवात् आगतस्य रासभादेः पूर्व भावो विद्यते। अब कल्पना करिए कि कोई जो है ना जुलाहा कहते हैं वस्त्र बनाने वाले को, तो कोई जुलाहा जो है वस्त्र बुन रहा है, कपड़ा बना रहा है, वहाँ पर दैवात माने दैव संयोग से कोई रासभ आ गया। ये रासभ कहते हैं गधे को, तो रासभ आदे है, आदि से ऊंट को ले लें, किसी भेड़ को ले लें, बकरी को ले लें, किसी को भी ले सकते हैं, तो रासभादे माने गधा आदि। अब जहाँ वो जुलाहा कपड़ा बना रहा है वहाँ देव संयोग से है ना कोई गधा आ गया, तो गधा आ गया, उसके बाद जो है ना कपड़ा बन करके तैयार हुआ। अब यहाँ पर वह जो गधा है उसमें कार्यात पूर्व भाव है, माने कार्य जो पट है उससे पहले वह विद्यमान वहाँ पर है, तो कार्यात पूर्व भावत्व उसमें है, तो क्या वह रासभ जो है वो भी पट के प्रति कारण हो जाएगा? रासभ को जैसे तंतु बेमा को हम पट का कारण मानते हैं, क्योंकि तंतु बेमा जो है पट का पूर्ववर्ती होता है, इसी तरह से वहाँ देव संयोग से जो गधा आ गया, क्या उस गधे को भी हम कारण मान लें, क्योंकि पट कार्य जो है उससे पूर्ववर्ती वो है, उसके पूर्व में वहाँ पर वह विद्यमान है। वही प्रश्न कह रहे हैं, यद्यपि पटोत्पत्तौ पट की उत्पत्ति में यद्यपि दैवात आगतस्य रासभादे दैव संयोग से कोई जो रासभ आदि आगत है, आ गया है, गधा सब आ गया है, तो पूर्व भाव वो विद्यते, तो कार्य से पूर्व भाव उसमें आ गया, माने कार्य से पहले वह वहाँ पर विद्यमान हो गया, तथापि नासो नियता, फिर भी वह जो है नियत नहीं है, क्योंकि देव संयोग तो एकाध बार होता है ना, हर बार थोड़े होगा। मान लीजिए कि अभी पट बन रहा है तो अभी देव संयोग से आ गया, लेकिन कल जो बनेगा उसमें नहीं आएगा, तो वह नियत नहीं है। नियत कहते हैं कि जब जब पट की उत्पत्ति हो तब तब उसकी पूर्व वह पूर्ववर्ती हो, निश्चित रूप से पूर्ववर्ती हो ही, तभी उसको हम नियत कहेंगे। मैंने कहा था ना कि नियत का अर्थ व्यापक करना, तो व्यापक क्या होता है? व्यापक वही होता है जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बहनी, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ बहनी होती ही होती है, वहाँ आग होती ही होती है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि धुआं हो और आग न हो। तो ये जो साहचर्य नियम है माने एक साथ होना, निश्चित रूप से एक साथ होना जो है उसी का नाम है व्यापक। तो यहाँ पर जो है मतलब एकाध बार तो देव संयोग से गर्धव आ जाएगा, तो गर्धव कार्य का पूर्ववर्ती हो जाएगा, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना। जो हर बार ऐसा पूर्ववर्ती होता है कार्य के, वही नियत कहलाता है। हर बार पूर्ववर्ती कौन होगा? जैसे तंतु बेमा आदि जो है वो जब जब पट को बनाएंगे तब तब तंतु बेमा आदि जो है कार्य का पूर्ववर्ती होगा, वह नियत रहेगा, हर बार उसका रहना ही रहना है। तो इसलिए तंतु बेमा तो कारण कहलाएगा, लेकिन वो रासभ आदि जो है, गर्दभ आदि जो है, वह कारण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसमें कार्य पूर्व भावित्व है किंतु नियतत्व नहीं है। नियतत्व नहीं है मतलब हर बार उस वह जो है पूर्व भावी नहीं होता, संयोग से कभी कभार हो जाता। आगे कहते हैं तंतु रूप से तो नियत पूर्व भाव अस्त्येव, किंतु तंतु जो है, तंतु याद है ना, तंतु मैंने कहा था सूत को जिससे कि वस्त्र बनता है, तो तंतु रूप जो कारण है वह नियत होता है, पट जहाँ जहाँ पट की उत्पत्ति होगी वहाँ वहाँ तंतु रहेगा ही रहेगा, तो वह नियत है और पूर्व भाव अस्ति एव, अपूर्व भावी भी है इसीलिए। और किंतु अन्यथा अच्छा वो यहाँ पर एक दूसरी बात आ रही है। अब ऐसा है कि पट के प्रति कारण है कौन है, तो तंतु बेमादिकम कारणम, तंतु बेमा आदि जो है कारण होता है पट के। अब यहाँ पर देखिए कि कोई जो है ना पीले कलर का तंतु है और कोई हरे कलर का तंतु है, लाल कलर का तंतु है, तो जब उससे हम पट का निर्माण करेंगे, वस्त्र का निर्माण करेंगे, तो अगर तंतु लाल है तो वस्त्र भी लाल होगा, तंतु अगर नीला है तो वस्त्र भी नीला होगा। तो अब यहाँ वस्त्र के प्रति पट के प्रति जैसे हम तंतु को कारण मानते हैं, उसी तरह से क्या हम तंतु में विद्यमान जो वह रूप है नीला काला पीला हरा, ये जो रूप होता है वह भी कारण है क्या, उसको हम कारण मान सकते हैं क्या, ये सवाल है। क्योंकि पट के प्रति तंतु तो कारण है, लेकिन तंतु में रहने वाला जो रूप है वह पट के प्रति कारण है कि नहीं, ये सवाल उठाया जा रहा है। अब इस पंक्ति को देखिए, तंतु रूपस्य, तंतु में जो रूप है नीला पीला काला वाला रूप है वह नियतः, वह नियत भी होता है माने निश्चित रूप से होता है, और पूर्व भाव अस्ति एव, और वह कार्य से पूर्व में ही रहता है। तो किंतु अन्यथा सिद्ध है, किंतु वह जो है वह अन्यथा सिद्ध है। कारण कहलाने के लिए केवल पूर्ववर्ती होना जरूरी नहीं है, केवल नियत होना जरूरी नहीं है, तीसरा भी जरूरी है उसमें, अन्यथा सिद्ध का न होना माने अनन्यथा सिद्ध होना। तो यह जो तंतु में रहने वाला रूप है नीला पीला काला, इसमें दो चीजें तो हैं, तीसरी चीज नहीं है। वह नियत तो होता है माने पट रूपी जो कार्य है उसके प्रति वह नियत रहता है तंतु का रूप, और पूर्वभावी भी है क्योंकि तंतु का रूप जो है वह पट से पूर्व में रहता ही रहता है। लेकिन वह किंतु अन्यथा सिद्ध, वह अन्यथा सिद्ध है माने बिना उसके भी जो है ना पट का निर्माण संभव है। तो अन्यथा सिद्ध है वह, अनन्यथा सिद्ध नहीं है। तो अनन्यथा सिद्ध रूपी जो तीसरा तत्व है कारण कहलाने के लिए, उस तीसरे तत्व के अभाव के कारण तंतु रूप जो है उसको हम कारण नहीं मानते हैं। किसके प्रति कारण नहीं मानते हैं, पट के प्रति कारण नहीं मानते। पट के प्रति कारण हम केवल तंतु बेमा आदि को ही मानेंगे, क्योंकि उनमें तीनों चीजें हैं, नियतत्व भी है पूर्व भावत्व भी है और अन्यथा सिद्धत्व का अभाव भी है माने अनन्यथा सिद्धत्व भी है। लेकिन तंतु रूप जो है उसमें नियतत्व है पूर्व भावत्व है किंतु अनन्यथा सिद्धत्व नहीं है। कहा कि क्यों नहीं है, कहा कि पट रूप जनन उपक्षीनत्वात्, कहा कि कारण जो होता है ना जब एक कार्य को उत्पन्न कर देता है फिर उसका सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। अब देखिए कि तंतु में जो नीला पीला वाला रूप रहता है उस नीले पीले रूप से क्या उत्पन्न लेता है, पट में जो नीला पीला रूप है वह रूप उत्पन्न होता है, तंतु से पट उत्पन्न हो, गौर करिए तंतु से पट उत्पन्न होता है और तंतु रूप से पट का रूप उत्पन्न होता है, समझ रहे हैं ना। तो तंतु रूप से कौन उत्पन्न हुआ, पट का रूप उत्पन्न हुआ, क्योंकि तंतु का अगर नीला रूप है तो पट का रूप भी नीला ही होगा। तो नीला रूप जो पट का है उसका जनक कौन हो गया, तंतु का रूप हुआ ना, तो तंतु के रूप ने पट के रूप को पैदा किया, पट के रूप को उत्पन्न किया और कार्य उत्पन्न कर देने के कारण उसकी शक्ति जो है वह क्षीण हो गई। तो फिर वह पट के प्रति इसलिए वह कारण नहीं होता, तंतु में रहने वाला रूप चूंकि पट में रहने वाले रूप को उत्पन्न किया है, पट में रहने वाले रूप के प्रति तो वह कारण हो गया, लेकिन वह तंतु के प्रति ये पट के प्रति वह कारण नहीं बनेगा क्योंकि उसकी शक्ति जो है वह उपक्षीण हो गई है, क्षीण हो गई। कोई कहता है कि पट रूप जनन उपक्षीनत्वात्, वह जो तंतु का रूप है वह पट के रूप का जनन किया है, पट के रूप को उत्पन्न किया है, इसीलिए वह उपक्षीन हो गया, उसके सामर्थ्य नहीं रही, उसकी शक्ति नहीं रही, और शक्ति के अभाव में जो है वह तंतु का वह पट का कारण नहीं बनता है। कहा कि ऐसा है ना कि पट रूप का कारण तो आप तंतु रूप को मानते हैं, तो जब पट रूप का तंतु रूप कारण है तो पट का भी कारण तंतु रूप हो गया, क्योंकि पट का रूप किस में रहता है, पट में ही रहता है, तो जब पट में रहने वाले रूप का कारण तंतु रूप होता है तो पट का भी वह जो है ना कारण मान लेना चाहिए। तो कहा कि पटम प्रति अपि कारणत्व, कहा कि देखिए पट रूप के प्रति तो हम तंतु के रूप को कारण मानते हैं, लेकिन चूंकि वह पट का रूप पट में रहता है इसलिए पट का भी अगर हम तंतु रूप को कारण मान लें तो कल्पना गौरव प्रसंगात, तो फिर जो है ना यहाँ पर गौरव हो जाएगा, कल्पना का गौरव हो जाएगा। अब क्या होगा कि रूप पट रूप के प्रति तंतु रूप कारण है ना, अब पट का रूप पट में रहता है तो चलिए पट का भी इसको हम कारण मान लेते हैं। अब क्या होगा कि पट में जितनी चीजें रहती हैं सबके प्रति इसको कारण मानना पड़ जाएगा, तो बहुत चीजों का कारण मानना पड़ेगा, इस तरह से कल्पना का गौरव हो, गौरव कहते हैं ज्यादा हो जाना, ज्यादा कल्पना हो जाना, तो केवल जो है पट के रूप के प्रति ही तंतु के रूप को कारण मानेंगे, क्योंकि वह अनन्यथा सिद्ध है, और पट के प्रति तंतु का रूप कारण नहीं माना जाएगा क्योंकि वह अन्यथा सिद्ध का अभाव, अनन्यथा सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, तो पट रूप जननस्य उपक्षीनत्वात्, वह चूंकि पट रूप को उत्पन्न कर देता है इसलिए पट के प्रति वह कारण नहीं होता है, वह अनन्यथा सिद्ध नहीं है। कहा कि चूंकि पट का रूप पट में रहता है तो पट रूप का अगर कारण है तो पट का भी कारण हुआ, कहा कि नहीं इस तरह से कारण मानेंगे तो कल्पना गौरव का प्रसंग होगा, फिर तो जो जो चीज पट में रहती है सबके प्रति उसको कारण मानना होगा, तो इतना कारण जो है ना मानना ठीक नहीं है। फिर आगे कहते हैं तेना अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम, इस तरह से आपने देखा कि वो रासभ जो है, गधा जो है, वह संयोग से आ गया तो वह उसमें पूर्ववर्तित्व तो है लेकिन नियतत्व नहीं है, इसलिए वह उसको हम कारण नहीं मानेंगे। ऐसे ही तंतु का रूप जो है वह पट का कारण इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि वह अनन्यथा सिद्ध नहीं है। इस तरह से जो अनन्यथा सिद्ध है, नियत है और पूर्वभावी है, उसी का नाम कारण है। वही कहा तेना अनन्यथा तेन माने तेन व्याख्यान, इस तरह से जो ऊपर में व्याख्यान किया गया, ये रासव आदि का वर्णन किया गया, तंतु रूप पट रूप का वर्णन किया गया, इस व्याख्यान के आधार पर क्या सिद्ध होता है कि तेन व्याख्यान अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वम कारणत्वम, जो अनन्यथा सिद्ध हो माने जिसके बिना कार्य सिद्ध न हो, दूसरा नियत हो और तीसरा पूर्वभावी हो, उसी का नाम कारण है। अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम, ताकि ये तो कारण का लक्षण हुआ ना कि जो अनन्यथा सिद्ध हो, नियत हो, पूर्वभावी हो, वह कारण है। अब कार्य का क्या लक्षण है, तो कहा कि कार्य का लक्षण होता है अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम, अर्थात जो अनन्यथा सिद्ध हो, जो नियत हो और जो पश्चात भावी हो। देखिए केवल एक ही अंतर है कारण और कार्य के लक्षण, अनन्यथा सिद्धत्व और नियतत्व तो दोनों में है, केवल एक अंतर है उसमें है पूर्व भावित्व, इसमें है पश्चात भावित्व, माने कारण जो है वह पूर्व में रहता है और कार्य जो है वह पश्चात रहता है, माने बाद में होता है। इस तरह से कारण और कार्य का दोनों का लक्षण यहाँ बताया कि अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम और अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम, तो कार्य और कारण का जो है यहाँ पर लक्षण बताया गया। अब यहाँ पर एक जो है ना शास्त्रार्थ भी किया जाता है कि कुछ लोग जो है ना कारण का लक्षण कुछ और कहते हैं, तो उस लक्षण का खंडन करने के लिए यहाँ पर पंक्ति बताई गई है, उसको भी मैं आज के पाठ में चाहता हूँ कि हो जाए। यत्तु कश्चित आह, जो किसी ने इस तरह से बताया है। जैसे ये जो है ना मीमांसा दर्शन वाले लोग जो है ना उन्होंने कारण का लक्षण किया है। यहाँ पर कश्चित शब्द से मीमांसक को हम पकड़ेंगे, तो मीमांसकों ने कहा है कि कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम, ऐसा उन्होंने कारण का लक्षण किया। इस लक्षण का क्या अर्थ हो गया कि कार्य के द्वारा जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण किया जाए वह कारण है। कार्य अनुकृत, कार्य से कार्य के द्वारा अर्थ कर लीजिए, अनुकृत माने अनुकरण, और अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी माने अन्वय वाला और व्यतिरेक वाला। ये सब क्या है अन्वय व्यतिरेक, ये सब तो मैं समझाऊंगा, अभी तो केवल मोटा मोटी समझिए। कार्य का अर्थ करिए कार्य के द्वारा, अनुकृत माने अनुकरण, अन्वय व्यतिरेकी माने अन्वय वाले का और व्यतिरेक वाले का। तो अब ये तो एक एक शब्द का अर्थ हुआ, अब पूरे को मिला करके अगर अर्थ करेंगे तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि कार्य द्वारा यस्य अन्वयस्य व्यतिरेकस्य च अनुकरणम क्रियते तत्कारणम। कार्य द्वारा यस्य अन्वयस्य व्यतिरेकस्य च अनुकरणम क्रियते तत्कारणम। फिर से बोलता हूँ, कार्य द्वारा यस्य अन्वयस्य व्यतिरेकस्य च अनुकरणम क्रियते तत्कारणम। तो कार्य द्वारा यस्य अन्वयस्य व्यतिरेकस्य च अनुकरणम क्रियते तत्कारणम, माने कार्य के द्वारा जिसके अन्वय का अनुकरण किया जाए, जिसके व्यतिरेक का अनुकरण किया जाए उसे कारण कहते हैं। ऐसा जो है मीमांसकों ने कारण का लक्षण किया, कहते हैं तत् अयुक्तम, यह जो लक्षण है यह अयुक्त है। अयुक्त है माने युक्ति युक्त नहीं है, युक्तियों से सिद्ध नहीं है। कहा कि इसमें कारण बताए क्यों नहीं है, तो नित्य विभू नाम व्योमादि नाम काल तो देश तश्च व्यतिरेक असंभवे न अकारणत्व प्रसंगात। कहा कि जो नित्य पदार्थ है और विभू पदार्थ है, नित्य पदार्थ कहते हैं जो तीनों काल में रहता हो, भूत भविष्य वर्तमान, और विभू कहते हैं व्यापक जो सर्वत्र रहता हो। तो ऐसा कौन है, तो व्योम आदि है। व्योम का मतलब हो गया आकाश, तो और आदि से ले लें काल को, दिक को, आत्मा को, ईश्वर को, इससे आदि से ले सकते हैं। तो ये जो होते हैं ना आकाश काल दिक आत्मा, ये सब नित्य भी होते हैं और व्यापक भी होते हैं। और ये नित्य विभू नाम व्योमादि नाम, अब जो नित्य होगा वो तो तीनों कालों में रहेगा, और जो विभू रहेगा वो हर एक देश में रहेगा, हर देश माने जगह स्थान, हर स्थान में रहेगा। इस तरह से तो ये लोग हमेशा, ये जो दिक आत्मा सब है आकाश है, ये तो हमेशा रहता ही है, इसका व्यतिरेक असंभव है। इसीलिए यह ऐसा अगर हम कारण का लक्षण करते हैं कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम, तो ये नित्य विभू जो व्योम आदि है वह कभी कारण नहीं बन पाएगा, जबकि सब लोग इसको कारण मानते हैं, इसलिए ये कारण का लक्षण सही नहीं है। विस्तृत में अगले पाठ में मैं इसको बताता हूँ।